Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। जिंदगी बने आसान।
नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, संघर्ष जितना ही कठिन होगा उतना ही शानदार आपकी जीत होगी। हमें ज़िंदगी में ये याद रखना है कि कोई भी चीज़ हासिल करने के लिए हमें एफ़र्ट्स लेने पड़ते हैं। बिना एफ़र्ट्स के अगर आपको कोई चीज़ मिलेगी तो आपको उसकी वैल्यू समझ में नहीं आएगी। तो इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, जब हम बात करते हैं इमोशंस की, आज हर व्यक्ति, मैं समझती हूँ पूरी दुनिया आज अपने इमोशंस के बस में नहीं है। वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे इमोशनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। तो क्या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एग्जैक्टली इमोशन जो, अगर हमें कोई भी तरीके की इमोशंस क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न क्या है?
से बेसिकली जो इमोशंस हैं, इमोशंस क्यों पैदा होती हैं, भावनाएं क्यों बनती हैं
जी,
और उसमें भी स्पेशली नेगेटिव भावनाएं क्यों बनती हैं
जी,
नकारात्मक भावनाएं, जब किसी विचार को हम बहुत इंटेंसिटी के साथ बार बार करते हैं।
हाँ जी।
सपोज हमने कोई चीज़ देखी, या हमने कोई चीज़ खाई, या हमने कोई चीज़ किसी की आवाज़ सुनी, और उसी को हम बहुत बार बार इंटेंसली उसको करते हैं, उस विचार को बार बार, उसको जीवन में बार बार हमारे सामने आती है, या हमारे जीवन में उसी तरह से बार बार उसी रूप में एक्सेसिवली एंड रेपिटेटिवली, एक्सेसिव ना बहुत ज़्यादा और बार बार आती है, तो हमारे इमोशंस, तो वो इमोशन बन जाती है, वो विचार भावना में कन्वर्ट हो जाता है।
ओके।
बेसिकली इंटेंस थॉट्स लीड टू इमोशंस। अब इंटेंस थॉट किस बारे में है, क्योंकि आज की दुनिया में वातावरण नेगेटिव है,
बिल्कुल
एटमोसफियर आप देखें चारों तरफ से देखें नेगेटिव है, लोगों का देखना सुनना बोलना खाना पीना हर चीज़ में देखो, तो व्यवहार देखो है ना, जिसमें स्वार्थ भरा हुआ है ना, सेल्फिश नेचर है लोगों की
जी,
ईगो से भरी हुई नेचर है,
करेक्ट,
उसमें मतलब जो है अटैचमेंट है, जिसको किसी से बहुत अटैचमेंट है उसके बगैर रह नहीं सकते हैं, बच्चों से है या आपस में किसी व्यक्ति का किसी से कनेक्शन है, या फिर उसमें लस्ट है बहुत, या फिर उसके अंदर ग्रीड है, ग्रीड फॉर नेम फेम एंड मनी है। तो ये जो चीज़ें हैं, इनके जिस जब इस तरह के विचार हम बार बार करते हैं तो उस तरह की भावनाएं पैदा हो जाती हैं।
ओके।
और वो फिर हमारे अंदर उस तरह की नकारात्मक भावनाओं को जन्म देती हैं
जी,
जिससे कि फिर हमारा जो ब्रेन है, हमारे आपको पता है जैसे हमारा ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं, 10,000 करोड़ न्यूरॉन्स नर्व सेल्स हैं जिससे हमारा ब्रेन बना हुआ है, और हर नर्व के बीच में और दूसरी नर्व के बीच में कंटिन्यूस कनेक्शन नहीं होता है, बीच में गैप होता है, एक एंडिंग दूसरे के एंडिंग बिगनिंग में गैप होता है, और वहाँ ट्रांसमिशन न्यूरोट्रांसमीटर्स के द्वारा, तो कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसकी एंड से निकलते हैं, वो न्यूरोट्रांसमीटर्स अगले न्यूरॉन को रिसीव करने के लिए, वो मैसेज देने के लिए, इंपल्स को मैसेज देने के लिए वो निकलते हैं।
Okay.
तो जब इस तरह से हम बार बार किसी इमोशन के साथ, किसी विचार के साथ टू मच लग जाते हैं, तो वो सोचते उसी बारे में सोचते वो इमोशंस फिर क्या, खाली भावनाओं को, उन भावनाओं से वाइब्रेशंस बनते हैं
जी,
तो आसपास जो जहाँ भी जिनसे उनका कनेक्शन है, जिस व्यक्ति से
जी,
उनके बीच में वाइब्रेशंस, फिर नेगेटिव वाइब्रेशंस बहने लगते हैं
जी,
जिसे हम टेलीपैथी भी कहते हैं, और इस तरह का एक वायुमंडल बन जाता है
जी,
इससे एक टोटल वातावरण भी नकारात्मक बन जाता है।
करेक्ट।
तो इस तरह से जो भावनाएँ हैं वो आज सारे समाज में व्याप्त हैं, जिसके कारण आज का इंसान सब कुछ होते हुए भी इंटेलेक्चुअली भी स्ट्रांग है, मटेरियली भी स्ट्रांग है,
करेक्ट,
आज के बच्चे हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, आईक्यू लेवल अच्छा है, दे आर मच मोर अवेयर देन अस,
करेक्ट,
जो हमारी जो मिडिल एज पॉपुलेशन के बजाय जो यंग बच्चे हैं
वो ज्यादा नॉलेज है,
ज्यादा नॉलेज है
जी,
और उनकी कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, आईटी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है, अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी है, किंतु वो इसके कारण से वो अपने आप को थकते चले जाते हैं।
करेक्ट। डॉक्टर साहब, अब जब हम बात करते हैं इमोशनल डिसऑर्डर्स के, कौन से ऐसे प्रकार के इमोशनल डिसऑर्डर्स हैं जो आज हमारी सोसाइटी फेस कर रही है?
सी बेसिकली अगर हम इमोशनल डिसऑर्डर की हम बात करते हैं, तो उसमें आज जो सबसे ज़्यादा व्याप्त है वो है सिनिकल बिहेवियर, सिनिसिज्म कहते हैं उसको, उसे कहते हैं फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स। क्योंकि जब हम ईगो हमारे अंदर होती है तो कई बार हम अपनी गलती को नहीं देख पाते।
करेक्ट,
जो गलती मैं कर रहा हूँ मुझे दूसरे में नहीं दिखाई देती है, तो हम इसलिए अपनी गलती का कारण भी दूसरे को बताते हैं, दूसरे व्यक्ति को बताते हैं। और सिनिकल बिहेवियर के कारण क्या है, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं।
ट्रू,
एवरीवन इज ब्लेमिंग ईच अदर। मेरी प्रॉब्लम इनके कारण है, मेरी प्रॉब्लम इनके कारण है। बच्चे कहते हैं मेरी प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स के कारण है, मेरी प्रॉब्लम इस कारण से है, मेरी प्रॉब्लम इस कारण से। वो कहीं फोकस अपने अंदर उसका कंट्रोल रिमोट ना रख करके रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे रहे हैं। राइट, तो सिनिकल बिहेवियर एक बहुत, सिनिसिज्म एक बहुत बड़ा कारण है जिससे बहुत तरह की बीमारियां आज समाज में फैलती जा रही हैं।
और भी कोई प्रकार
है? और जैसे फिर है एक हॉस्टिलिटी,
अच्छा
हॉस्टाइल बिहेवियर, ये बड़ा ही एक पॉइजनस बिहेवियर है। किसी ने हमारे साथ थोड़ा सा हमारे हिसाब से नहीं किया, या किसी ने हमारे खिलाफ थोड़ा सा गलत कर दिया, शायद उसका इंटेंट हमारे ऐसा नहीं था किंतु उससे हो गया बाई चांस, तो हम उसके प्रति रिवेंजफुल बिहेवियर रख देते हैं। और जब हम ऐसे मूड उसमें रहते हैं तो हमारे अंदर जो हार्मोनल हमारा पूरा हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड्स, पूरा का पूरा ये जो हार्मोन और क्लस्टर है पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। और इतने ज़्यादा लेवल ऑफ हार्मोन्स हो जाते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन्स इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जिससे कि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम, जैसे नहीं आप कह सकते कमांडो जैसे होते हैं
जी,
हमेशा एक्शन में रहते हैं, हमेशा और रेडी टू फाइट मोड में रहते हैं, तो पूरी बॉडी एकदम टायर आउट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कभी किसी को आज की जो हॉस्टिलिटी समाज में, हॉस्टिलिटी डेवलप हो गई है तो समाज में बड़ी कड़वाहट पैदा हो गई
जी,
इसमें मतलब आदमी अपने आप को बहुत असहाय सा महसूस कर रहा है
जी।
कोई किसी के प्रति से मतलब रिगार्ड नहीं है, किसी के प्रति एक आपस में सच्चा प्यार नहीं, भाई भाई को नहीं है, या इवन फ्रेंड्स में सही ढंग से नहीं है, तो कोई ना कोई बात पे हम डिसलाइकिंग कर लेते हैं और उसके बाद ही ऐसा हो जाता है।
करेक्ट।
तीसरी जो इमोशनल डिसऑर्डर जो है वो सब एक दूसरे को रॉब डालना, इसके रॉब डालने की मतलब हर एक आदमी दूसरे को दबा देना चाहता है अपनी, उससे एक क्या बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज से, मतलब ये भी एक तरह का जैसे ना इमोशनल डिसऑर्डर है।
करेक्ट।
और चौथा जो है जिस पर रादर इसको हम पहला भी रख सकते हैं, वो आज क्रोध जिसे कहते हैं, एंगर।
करेक्ट।
जो कि आज सब जगह व्याप्त है, कोई भी व्यक्ति दुनिया में एंगर नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहता, किंतु हर आदमी ही गुस्सा करता है।
करेक्ट।
और हर एक आदमी चाहता है, जानता है कि गुस्सा करने से कुछ मिलता नहीं है, कोई कार्य में सफलता नहीं मिलती है, पर जो फॉल्स इंप्रेशन है बचपन का, जो हमने ओरल फेज, प्री ओरल फेज और ओरल फेज ऑफ लाइफ में जो हमारे रिकॉर्ड हो गया है, जो रिवार्ड हम देखा है समाज में बचपन में, वो रिकॉर्ड होगा कि एंगर से फ़ायदा होता है। इनफैक्ट हम सभी जानते हैं, हमारे सभी दर्शक भी जानते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी क्रोध से फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ये बेसिकली सारे ही आपस में जैसे कह सकते हैं आप एक तरह के एक ही फैमिली के सिबलिंग्स हैं
जी,
एक ही परिवार के बच्चे हैं सारे ना, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, रॉब डालना, किसी को प्रेशर में लेके आना, और फिर तीसरा चौथा जैसे एंगर, क्रोध। तो ये एक सारी इस तरह की प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम समाज में, समाज को कड़वा बना दिया है ना, बिटर बना दिया है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम समाज में, प्यार की एकदम कमी हो गई, रियल प्यार जिसे कहते हैं खत्म होते जा रहे हैं।
करेक्ट। अब जब हम बात करते हैं इमोशंस की, कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इन दोनों के बीच में कौन सही है और कौन गलत है? क्योंकि इमोशनल डिसऑर्डर्स की बात जहाँ पे हम कर रहे हैं, ऐसे सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो इतना इमोशनल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, तो ये इसके वजह से भी काफ़ी क्लैशेस होते हैं, खास करके अगर आप वाइफ एंड हस्बैंड के रिलेशनशिप की बात करें, कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है अपने लाइफ में, सब चीज़ों को लेकर के ही इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड ज़्यादा इमोशनल नहीं है, लेकिन वाइफ जो है वो काफ़ी इमोशनल है, इसकी वजह से रिश्तों में काफ़ी करवाहट आने लगी है, तो ऐसे में क्या किया जाए?
सी बेसिकली ये जो वर्ड है ना, प्रैक्टिकल वर्ड गलत है।
अच्छा,
प्रैक्टिकल नहीं, लॉजिकल कहेंगे।
अच्छा,
कन्वेंशनल कहेंगे ना, जैसे लॉजिक वो लॉजिक को देख के चलता है, हस्बैंड लॉजिक को देख के चलता है, नहीं ये ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा
जी।
ये टाइम क्या फायदा हम बैठ के बातें करें, फालतू बात करें, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या मिलेगा इससे? तो दे डोंट गिव टाइम टू द फैमिली, है ना?
करेक्ट।
बच्चों को टाइम नहीं देंगे, बिजनेस में लगे रहेंगे क्योंकि वहाँ रिवार्ड मिल रहा है, वहाँ इनकम मिल रही है, वहाँ जॉब की बात और दूसरी बातों में जानकर लोग प्रेज करते हैं, घर में प्रेज नहीं मिलती है, कई बार घर में क्रिटिसिज्म होता है, तो बाहर जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, घर में रहना कम पसंद करेंगे। तो उसे हम लोग प्रैक्टिकल कह देते हैं कि आदमी प्रैक्टिकल है, अपना टाइम एक्यूरेट यूज़ करता है
जी।
और इमोशनल माना जैसे भावनाएं, जो भावनाएं हैं हमारी, भावनाओं को हम लोग महत्व दें, तवज्जो दें
जी।
जो भी हमारे फैमिली के रिलेटिव्स, फैमिली के जो मेम्बर्स हैं, उनकी कुछ भावनाएं होती हैं संबंधों में, माता पिता के प्रति, बच्चों की, पत्नी की पति के साथ, पति की पत्नी के साथ, उन भावनाओं को हम तवज्जो देते हैं तो वो परिवार में एक संबंध को गाढ़ा करती है, है ना, डीप अंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। किंतु जीवन जो है ना तो भावनाओं से चलता है जीवन, ना तो लॉजिक से चलता है।
करेक्ट।
जीवन दोनों के बैलेंस का नाम है, लॉजिक और इमोशंस का, दोनों। ऐसे हमने कहा ना, लेफ्ट ब्रेन हमारा क्या है, लॉजिकल ब्रेन है।
करेक्ट।
और हमारा राइट ब्रेन
इमोशनल
ब्रेन है ना, तो है तो दोनों ही ब्रेन इंसान के अंदर, और दोनों का बैलेंस होने से ही हमारा जीवन संतुलित हो सकता है, बैलेंस्ड हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है, क्रिएटिव हो सकता है
जी।
उसमें खुशी आ सकती है, वो समाज के लिए हम यूज़फुल हो सकते हैं, एक दूसरे के लिए यूज़फुल हो सकते हैं। किंतु अगर हम खाली इधर चलें या इधर चलें, दोनों ही गलत हैं, बोथ आर रॉन्ग।
ओके, तो रियलिटी ये है कि दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, इमोशनल ब्रेन का और साथ ही साथ प्रैक्टिकल ब्रेन का,
प्रैक्टिकल नहीं लॉजिकल,
लॉजिकल ब्रेन का, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि इमोशनल व्यक्ति जो होते हैं वो दिल के बड़े साफ होते हैं, ऐसा सुना है मैंने ऐसे, क्योंकि उनके मन में और कुछ नहीं होता, उनके भाव शायद हमेशा सही होते हैं, लेकिन सामने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो उन्हें गलत समझते हैं, ऐसी फीलिंग के साथ में वो अपने को, फिर उनको खुद को ही डाउट होने लगता है जो व्यक्ति इमोशनल होते हैं कि क्या मैं ही गलत हूँ। तो ये जो सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, इस चीज़ का क्या सलूशन है?
सी बेसिकली इमोशंस, जो इमोशनल व्यक्ति होता है अधिकतर सेंसिटिव होता है।
करेक्ट।
वो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता है।
अच्छा,
एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखता है ना, एक्सपेक्टेशन परिवार से, अपने संबंधों में, बच्चों से, पति से या पत्नी से या माता पिता से
जी।
बच्चे भी इमोशनल कई बार होते हैं पेरेंट्स के प्रति, या भाई बहन भी आपस में इमोशनल हो सकते हैं।
करेक्ट।
तो वो उस एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखते हैं और एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन, जैसे ही कोई व्यक्ति, वो व्यक्ति कुछ कह दे जिससे वो एक्सपेक्टेशन, जिससे सो कॉल्ड स्पेशल वन जो होता है,
Correct.
किसी के लिए सपोज पत्नी के लिए पति है, एक बहन के लिए एक भाई है, है ना, या बच्चे के लिए माँ है उसकी, वो कुछ कह देती है सो कॉल्ड स्पेशल वन, जो एक्सप्रेस्ड इमोशंस जो होती हैं
जी।
और उसको या इग्नोर कर दें या उसको कोई, वो व्यक्ति कुछ उसको बोल दे, तो उसको उससे कभी उम्मीद नहीं होती कि मेरी माँ मुझे ऐसा कह सकती है, मेरी पत्नी मेरे को ऐसा बोल सकती है, मेरा पति मेरे लिए ऐसा बात कर सकता है।
करेक्ट।
तो उसी कारण वो बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील करते हैं, उनका जो कहते हैं ना, जो एक दुखती रग पर हाथ लग जाए,
हाँ, वो वाली बात हो जाती
है। तो वो वाली बात हो जाती है और उससे फिर क्या थॉट की एक श्रृंखला शुरू होती है, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, और उससे फिर जो है एक सीक्वेंस, एक विशेष साइकिल बन जाती है और उसी में आदमी घूमता रहता है, थॉट स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है।
ओके।
इसी को सेंसिटिव बिहेवियर भी कहते हैं। और वो व्यक्ति अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है।
ओके।
और उससे फिर उसके अंदर इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, भावुक हो जाता है और अल्टीमेटली दिस लीड्स टू डिप्रेशन।
करेक्ट।
तो इससे फिर वो डिप्रेशन की तरफ, अवसाद की तरफ चला जाता है। तो ये एक सीक्वेंस है, मतलब इसमें आदमी इस तरह से बनता 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 चला जाता है। और इसका ये जो है, इसका इलाज यही है कि जीवन एक कड़वा सत्य है।
करेक्ट।
राइट। इसमें हर आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है संसार रूपी नाटक में, इसको हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है जो कि उसके भी बस में नहीं है पार्ट प्ले करने वाले। और कई बार क्या होता है, हम समाज में जैसे पति पत्नी हैं या घर में हैं तो पति अपने आप को डायरेक्टर समझ लेता है घर का, या पत्नी कई बार अपने आप को डायरेक्टर, ज्यादा डोमिनेटिंग है तो पत्नी अपने को डायरेक्टर समझ लेती है और सोचती है कि मेरे हिसाब से सब कार्य होना चाहिए। जब भी ट्रूथ क्या है, ट्रूथ ऑफ द फैक्ट क्या है, यह है कि हम सब एक्टर्स हैं।
करेक्ट। आप पूरी तरह से अगर अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लगेंगे तो आप दूसरों को अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे।
हम सब एक्टर्स हैं और सबका इक्वल पार्ट है।
करेक्ट।
इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक एक का हर एक का पार्ट इम्पॉर्टेंट है, किसी का किसी समय इम्पॉर्टेंट हो सकता है, किसी का किसी समय इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं उसके अनुसार वो डायरेक्शन में आता है
जी।
जैसे तो कहते हैं परमात्मा डायरेक्टर है, गॉड इज द डायरेक्टर, बट एक्चुअली हमारे कार्मिक अकाउंट से उसको डायरेक्ट करते कर रहे होते हैं। उन लास्ट जो जन्मों के कर्म होते हैं या पिछले जन्म इसी जन्म के पिछले जन्म कर्म उसको डायरेक्शन कर रहे होते हैं, डायरेक्ट कर रहे होते हैं, और हमें उस तरह से करना ही पड़ता है। इसलिए हमें सब हर एक के रोल को एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करने से हर एक को फिर साक्षियों को देख सकते हैं, भले कोई भी आत्मा है, मेरा कितना भी क्लोज रिलेटिव है, क्लोज संबंधी है या फ्रेंड है, वो उसका जो पार्ट साक्षियों को देखे, और साक्षियों के देखने में फिर एक आनंद आता है। जैसे खेल देखते हैं ना, क्रिकेट का मैच देखते हैं, साक्षियों के देखने में कोई भी प्लेयर अगर चाहे अपोजिशन का है या इंडिया का है, तो चौका लगाए छक्का लगाए उसमें क्लास है जो उस, या फिर उसकी बॉल है गुगली डाली या ऑफ ऑफ कटर डाला या आउट स्विंगर डाला या इन स्विंगर डाला, उसमें कला है, उस कला को एंजॉय कर सकते हैं।
करेक्ट।
तो ये जो है उससे फिर क्या हमारे अंदर खुशी और आनंद पैदा होता है, इसके एक अपोजिट जैसे सीक्वेंस ही अपोजिट हो जाती है।
करेक्ट। अब डॉक्टर साहब इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, इमोशंस में कई बार ऐसा भी हुआ है कि कुछ इमोशंस हमें कोई कार्य करने में और ज़्यादा मदद डालता है। जो इमोशनल लोग होते हैं शायद वो कहीं ना कहीं, मैंने ये भी नोटिस किया है कि वो हर कार्य को बहुत ही प्यार से भी करते हैं, भले अगर उनके माइंड स्टेट सही है तो, अगर वो गुस्से में है या ऐसे कोई समय पे हो तो वो शायद ना करें, लेकिन ये नोटिस किया गया है कि वो काम हमेशा सब सही करेंगे, तो ये किस हद तक सही है?
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भावना है ना, कि भावना जिस व्यक्ति के प्रति भावना है, जिस सिचुएशन उसके लिए भावना, उस भावना से करेंगे
जी,
उसमें बह जाएंगे, सब कुछ लगा देंगे।
करेक्ट।
राइट। किंतु वो लॉजिक नहीं देखेंगे, पीछे वाले सामने वाले को उसकी कदर है कि नहीं, इज दैट मच रिक्वायर्ड, इतना करने की आवश्यकता है क्या।
करेक्ट।
तो इसलिए भावना भी टू मच, एक जो रिजल्ट फिर उससे एक्सपेक्टेशन होती है, जो कर रहा है ना जो व्यक्ति, भले चुपचाप कर रहे हैं और उससे एक्सपेक्टेशन है कि मेरी इस बात को अप्रिशिएट किया जाए, मेरी जो मैं इसके लिए कर रही हूँ मुझे अप्रिशिएट करे, है ना, और वो नहीं कर, बिकॉज उसको जो लॉजिकल माइंड वाला है उसको तो दूसरे अपने काम से मतलब
है, काम से मतलब
उसे मतलब नहीं है, आपने किस भावना से खाना बनाया, कितने प्यार से बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है,
सही,
मैं खाना खा के आया हूँ,
उसी वक्त वो क्या सिचुएशन होती है, क्योंकि वो और उधर ही इमोशंस कितने प्यार से वो भोजन बनाते हैं और वो लेट आए,
फिर लेट आएंगे या कहेंगे मैं खा चुका हूँ ऑलरेडी, तो फिर क्या होगा, फिर वो आपकी वो हाना हर्ट हुई ना।
करेक्ट।
तो आपने तो भावना से बनाया, किंतु वो भावना में कितना फिर उसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी वो देखते हुए नहीं बनाया।
करेक्ट।
कि ये व्यक्ति इतने लेट आते हैं, इनका टाइम ऐसा है, इनको एक खाना भले पसंद है किंतु इनका खाना भी शाम को कहीं और हो जाता है।
Correct.
तो मैं पहले पता कर लूँ इज ही कमिंग इन टाइम और नॉट, है ना। तो ये सब भावनाओं का मतलब, इसलिए मैं बार बार ये इस बात को बार बार एम्फेसाइज करना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि राइट और लेफ्ट ब्रेन का बैलेंस होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए हमें मेडिटेशन चाहिए।
अच्छा,
मैं एक बात और यहाँ बता देना चाहूँगा, ये जो एंगर है, हॉस्टिलिटी है और सिनिसिज्म है या दूसरे पे रोब डालना है
जी,
ये चार जो बातें हमने की, ये एक्चुअली बहुत ही खतरनाक इमोशंस हैं जो कि हमारे पूरे सिस्टम को डिसरप्ट कर देती हैं।
ओके।
अपने अंदर का भी वातावरण ख़राब कर देती हैं
और बाहर का,
इंटरनल एनवायरनमेंट भी ख़त्म कर देती हैं और दूसरा बाहर का भी वातावरण ख़राब कर देती हैं। अच्छा, ये तीनों चारों ऐसी वो हैं जो एक बार अगर आपके मन में आ गया, सपोज गुस्सा आ गया, तो ऐसा रिसर्च ने बताया है कि 3 दिन तक लगभग आपके अंदर ऐसा एक कैस्केड, ऐसे मैकेनिज्म बन जाता है अंदर बॉडी में, ऐसा विशेष साइकिल बन जाता है कि एंजाइम के पीछे एंजाइम, हार्मोन्स के बाहर पीछे हार्मोन्स, वो एकदम नेगेटिव, जैसे नेगेटिव ऐसे फाड़ी ऊपर से पानी गिरता है, एक फाड़ी पर गिरता है, फिर दूसरी पर गिरता है, फिर तीसरी पर गिरता है, चौथी पर, उसका वेग तेज होता जाता है। इसी तरह से वो हार्मोन्स का ऐसा कनेक्शन है आपस में कि वो जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद करके इतना बॉडी पे इतना असर डालता है
जी।
कि बॉडी के लिए हर सेल शटर हो जाती है, हर सेल शटर हो जाती है, आपकी रीजनिंग पावर ब्रेन के अंदर, हार्ट के खून पंप करने की पावर, खाना पचाने की पावर, किडनी के में खून, किडनी की खून साफ करने की पावर, वो बहुत कम हो जाती है, और इवन अगले 3-4 दिन तक आपको हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखने में अगर वो 4 से 5 गुना अगर आपको अभी आपने गुस्सा किया है तो अगले 4 घंटे में आपको कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा चांस है हार्ट अटैक आने के, एज कम्पेयर टू मतलब नेक्स्ट 48 आवर्स तक हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो गुस्सा जो है एक ऐसी चीज़ है, फिर इसके जो इससे जो पैदा होती हैं वो सिनिकल बिहेवियर जो पैदा होता है, मैंने इसको
जी, बिल्कुल
इसको एंगर का ही एक ऑफ स्प्रिंग भी कह सकते हैं, जो गुस्सा करता है उसके अंदर फिर दूसरों के प्रति एक ऐसी फीलिंग रहती है ना कि भी मैं ही ठीक हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, है ना, क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड रहता है, हर बात के लिए अपने गुस्से के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराएगा, है ना। और एक गुस्सा जो है बेसिकली एक तरह का बार्ब है, बार्ब समझते हैं, जैसे हमने जैसे हमारा पता है ना, हमने जैसे एक ईगो है हमारे अंदर। ईगो क्या चीज़ है? जो हमने पजेस किया है, जो हमने कमाया है, नाम कमाया या हमने पैसा कमाया या पद के एक पद को प्राप्त किया, नेम फेम को प्राप्त किया, हमने कंफर्ट जोन बना लिया है
जी।
उसको कोई भी एंडेंजर करे, उसको कोई हर्ट करने, मेरे ईगो को हर्ट करने की कोशिश करे, मेरे कंफर्ट जोन में मुझे आकर के मेरे घुसने की कोशिश करे, तो एक एंगर क्या है उसके लिए एक तरह की सेफ्टी रिएक्शन हमने बना ली।
ओके।
तो एंगर उस ईगो को, जो कोई ईगो हर्ट करता था, हम क्या फील करते हैं? गुस्सा आ जाता है हमको, नहीं?
करेक्ट।
राइट, क्योंकि हम कहते हैं ये अच्छा इसकी अभी ये हिम्मत मेरे सामने ऐसा बोलते हैं, है ना
जी।
तो ईगो हर्ट। फिर दूसरा ग्रीड, नेम फेम एंड मनी। मेरी मनी, जो मैंने मनी पैसा कमाया है, जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कार है, मेरी चीज़ें हैं ना, जो मेरा फेम है, नाम मेरा जो समाज में हो गया, फेम जो मुझे प्रसिद्धि मिली है, उसको कोई हर्ट करने की कोशिश करे तो गुस्सा आता है।
राइट,
इजंट इट?
करेक्ट।
यू फील इरिटेटेड, राइट?
ट्रू।
और इसी तरह से जो हमारा कोई हमारी जो जो हमारी जो ईगो अटैचमेंट जिससे हमारा मोह है
जी,
जिससे हमारा अटैचमेंट है
जी,
जो व्यक्ति मेरा बेटा हो सकता है, मेरी बेटी हो सकती है, मेरी पत्नी हो सकती है, मेरा पति हो सकता है, मेरी माँ हो सकती है, मेरे फादर हो सकते हैं, जिनसे मेरी बहुत अटैचमेंट है, जिससे आई एम कंसर्न अबाउट देम, कोई उनको कुछ भी कहने की कोशिश करे, हर्ट करने की कोशिश करे,
True.
उनको को डाउन करने की कोशिश करे, तो क्या होता है?
तकलीफ होती है,
गुस्सा आता है,
प्रेशर
आता है ना। जैसे ईगो में एक चीज और मैं कहना बोल रही हूँ, मान लो कई बार कहते हैं कोई सच कोई झूठ बोलता है ना मेरे साथ, मुझे गुस्सा आता है।
करेक्ट,
राइट। झूठ बोलता है तो वो भी एक ईगो को, ईगो जैसे मैं अपने आप को सच्चा समझता हूँ, सत्यवादी समझता हूँ, तो इसको कोई हर्ट करता है, उसमें कोई गलत करता है, तो फिर मुझे गुस्सा आता है।
करेक्ट,
इजंट इट?
करेक्ट।
फिर एक लस्ट है, जिस व्यक्ति से मुझे बहुत अच्छा लगता है, उस व्यक्ति मैं समझता हूँ व्यक्ति से मेरा स्पेशल कनेक्शन है।
करेक्ट।
उसको कोई उसकी लाइफ में कोई आना चाहे या उसको कोई आसपास उसके आसपास आने की कोशिश कर, तो भी गुस्सा आता है।
तो भी गुस्सा आता है, राइट?
राइट? राइट। या मेरी डिजायर उसे पूरी ना हो, तो भी गुस्सा आता है।
True.
तो ये गुस्से के ओरिजिन है मतलब ना बेसिकली, ये जो तो अगर हम कहना चाहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, पांच विकारों में से क्रोध एक विकार है, कि तो बाकी जो चार विकार हैं वो इसकी जड़ है।
ओके।
ईगो, अटैचमेंट, मोह जिसे कहते हैं, फिर ग्रीड, लोभ और काम विकार।
okay.
इन चारों को हम राइट ठहराने के लिए हम क्या करते हैं, क्रोध को एक तरह से कमांडो बना लेते हैं।
करेक्ट,
इजंट इट?
ट्रू।
और इसी तरह से फिर उसको सिनिसिज्म, इसको इसी से फिर सिनिसिज्म पैदा हो जाता है।
ओके।
okay. उसमें जैसे इसमें चारों बातों में अगर हम देख लें तो इसमें फाइंडिंग फॉल्ट विद दिस, कि इसने ऐसा किया ना, मेरे ईगो मेरे कंफर्ट जोन में आया, मेरे नाम को मेरे चीज को इसने डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, इसने ऐसा किया, इसने मैंने ये किया, सिनिकल, ये मेरा दुश्मन है, राइट? एनिमोसिटी की फीलिंग आ जाती है।
करेक्ट।
और फिर इसी तरह से रिवेंजफुल बिहेवियर वाली जो बात मैंने, हॉस्टिलिटी, वो भी इसी से पैदा होती है।
करेक्ट।
और रोब डालने की आदत भी इसी कारण से पैदा होती है। तो बेसिकली ऐसी नेगेटिव इमोशंस हैं जिससे आदमी एक बार कर ले तो ऐसे विशेष साइकिल में फंस जाता है, जिससे कि फिर सारे मतलब इवन हमारे जो हार्ट रेट बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, शुगर लेवल्स बढ़ जाना, हमारे लीवर में बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बनना, गुड कोलेस्ट्रॉल बनना बंद हो जाना, क्लॉटिंग फैक्टर्स बनना, क्लॉटिंग फैक्टर्स, खून जमने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है नसों में, है ना, दिमाग में ब्लड फ्लो कम हो जाता है, हमारी जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा, इसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, हमारे कॉर्टिसोल हार्मोन इतने बढ़ जाते हैं, हमारी हड्डियाँ खोखले होने लगती हैं, अल्टीमेटली ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, जॉइंट डिजीज होने लगती हैं, गर्दन जल्दी सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होने लगता है।
ओके।
क्योंकि ब्लड फ्लो इस तरह से बढ़ जाता है, वी बिकम स्टबर्न, एक स्टबर्न जिद भी एक इसके अंदर ही आ जाता है, जिद करना, स्टबर्न नेचर,
अच्छा,
रिजिड एटीट्यूड, है ना, ये भी इसी का एक पार्ट आ जाता है। तो इस तरह से सारी ये इमोशंस हैं जिनका हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं।
डॉक्टर साहब, ये तो मैं समझ गई कि ये सभी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हम सफ़र कर रहे हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का सलूशन क्या है? किस तरह से हम इससे बाहर निकल सकते हैं?
सी बेसिकली, अगर कोई चाहे कि मैं आज के बाद गुस्सा ना करूं,
जी,
आज के बाद किसी के प्रति बदला लेने की भावना ना रखूं, किसी के प्रति आज सबको क्रिटिसाइज करना बंद कर दूं, सबसे नम्रता से बिहेव करूं,
जी,
किसी बात हर बात में फ्लेक्सिबल रहूं, जिद ना करूं, स्टबर्न ना बनूं,
करेक्ट,
तो ऐसा पॉसिबल है क्या? ये ऐसा ही होगा जैसे अंधेरे को अंधेरे से अंधेरा है आपके कमरे में, आप उसको झाड़ू लेके भगाना चाहें,
करेक्ट,
कि झाड़ू से भागेगा अंधेरा नहीं भागेगा ना। और कितना ही लोग आज जो इलाज क्या करता बताए जाते हैं यूजुअल प्रोग्राम्स में, कि गुस्सा आ रहा तो एक गिलास पानी पी लो, आंखें बंद कर लो, लंबे लंबे सांस लेना शुरू कर दो, इज दैट पॉसिबल? हर जगह ऐसा कर सकते हैं?
नहीं, हर बार नहीं हो सकता, क्योंकि हम शायद कई बार पीक ऑफ एंगर के रहते हैं, तो वो पीक पे ये सब तो याद रहेगा ही नहीं।
नहीं, अगर कर भी ले तो इज दैट परमानेंट?
नो, इट्स जस्ट फॉर टेंपरेरी।
सो बेसिकली इसकी जो रूट कॉज क्या है, रूट कॉज है कि इसका रूट कॉज है कि हमारे अंदर जो एक पॉजिटिव एनर्जी,
जी,
जैसे हमें अंधेरे कमरे में अंधेरा है तो हम क्या करें, लाइट का स्विच ऑन कर दें तो क्या होगा, अंधेरा भाग जाएगा। तो बेसिकली एंगर, सिनिसिज्म, हॉस्टिलिटी, आप किसी पर रॉब डालना या स्टबर्न नेचर, दिस इज लैक ऑफ लाइट, लैक ऑफ स्पिरिचुअल लाइट। अगर उस स्पिरिचुअल लाइट को हम ऑन रखें, जिसको हम कहते हैं एक ट्रू लव, ट्रू लव, सेल्फलेस लव, अगर हम समाज में दे सकें, दूसरे को पैदा कर सकें, वो कैसे होगा? वो अगर वो लाइट आने के बाद, लव की लाइट आने के बाद, प्यार, सच्चे प्यार की लाइट आने के बाद, अंधेरा खत्म ही हो जाएगा।
क्या बात है।
ना तो वो सप्रेस्ड एंगर, एंगर भी दो प्रकार का होता है, सप्रेस्ड, जो भावुक लोग होते हैं अपने एंगर को सप्रेस कर लेते हैं, सेंसिटिव लोग होते हैं, और जो टाइप ए नेचर के लोग होते हैं एक्सप्रेस कर लेते
हैं।
तो बेसिक इसका इलाज यही है कि एक तो अपनी स्पिरिचुअल एंगल, स्पिरिचुअल लाइट को पहचाने, वहाँ बटन ऑन करें, मैं कौन हूँ,
ठीक है,
मैं कौन हूँ, ये कौन है, सामने जिनसे मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ ये भी तो मेरे एक भाई ही हैं,
करेक्ट,
आत्मा रूप में। तो अगर हम इस बात पे जाएं और फिर अपने को सबको अनकंडीशनल केयर दें,
करेक्ट,
आज गुस्सा क्यों आता है, कंडीशनल केयर,
कंडीशनल,
किसी को तो हम बहुत अच्छी केयर दे रहे हैं, ये मेरा है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई है, इवन तीन बच्चे हैं, माँ को एक बच्चा बहुत अच्छा लगता है, उसको केयर कर रही है, दूसरे को केयर कम कर रही है,
करेक्ट,
तो दूसरे बच्चे को गुस्सा आता है,
करेक्ट,
हॉस्टाइल हो जाता है, सिनिकल हो जाता है। तो बेसिकली अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर,
करेक्ट,
तो जब वो तभी पॉसिबल जब आप सम्मान में होंगे, इसी को सच्चा प्यार कहते हैं, और ये हीलिंग है नेचर, इससे हीलिंग होती है।
एग्जैक्टली,
तो इस तरह से अगर हम दें तो इसका, मैं समझता हूँ थोड़े शब्दों में यही इसका इलाज है, और आज योग मेडिटेशन में इसका इसी तरह से जब प्रैक्टिस करते हैं तो वी डेवलप अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्ट फॉर एवरीवन, केयर फॉर एवरीवन, एंड दैट हील्स। मतलब इट हैज़ बीन सीन, पिछले मैंने 29-30 साल में जब से मैं ब्रह्मा कुमारी में मैंने देखा
जी।
तो तब से देखा कि जो लोग बहुत हाई एंगर कंटेंट था, जो हम अपने पेशेंट्स में टेस्ट करते हैं, विद इन ए वीक उनका एंगर कंटेंट 36 स्कोर था तो स्कोर 3 रह जाता है, 4 रह जाता है।
अरे वाह,
ट्रेमेंडस, मतलब ट्रेमेंडस डिक्रीज, वो गुस्सा करना ही भूल जाते हैं।
वेरी नाइस।
तो बेसिकली वो जब अंदर से पॉजिटिव इमोशन को हम जागृत करते हैं, जो कि सच्चा प्यार है, सेल्फलेस लव है, तो उससे ये नेगेटिव इमोशंस अपने आप सब खत्म हो जाते हैं, ऑल ऑफ देम डिसअपीयर।
दिस इज सो ब्यूटीफुल, आज हमने इतनी सारी बातें सीखी।
एक बात और मैं कहना चाहूँगा,
अच्छा,
स्पेशली हॉस्टिलिटी के लिए ध्यान रखें कि फॉरगिव करना बहुत आवश्यक है।
ओके।
जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे, माफ नहीं करेंगे, तब तक भूल नहीं पाएंगे।
करेक्ट।
ये बहुत आवश्यक है, और भूल फॉरगिव तभी कर पाएंगे जब हम दूसरे को आत्मा समझेंगे।
करेक्ट।
बड़ा भाई समझेंगे तो ही पॉसिबल है, तो फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो इस तरह से अगर हम प्यार और माफ करते चले, भूलते चले, तो हमारे नेगेटिव इमोशंस का जड़ ही खत्म हो जाएगी।
जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इतनी खूबसूरत बातें हमने सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि अगर हम अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल केयर किसी को दिखाएंगे तो वो व्यक्ति महसूस करेगा और वो भी धीरे धीरे परिवर्तित होने लगेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। ओम शांति। दोस्तों, आज हमने क्या जाना, अगर हमारे अंदर अनकंडीशनल लव है, अनकंडीशनल रिस्पेक्ट है, और साथ ही साथ अनकंडीशनल केयर है लोगों के प्रति, तो आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर में एक अजीब सी लाइट क्रिएट होगी और वो लाइट सभी को दिखाई देगी। वो जो आपके अंदर की एनर्जी है वो इतनी पॉजिटिव बना लीजिए कि जो आपसे मिले वो भी पॉजिटिव बन जाए। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में, जिंदगी बने आसान। ओम शांति।